नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। दिल्ली सरकार ने भूमि पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र और भूमि स्थिति रिपोर्ट की अनिवार्यता समाप्त की। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सुखदेव विहार में दिल्ली विकास प्राधिकरण के मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश वर्मा ने यमुना की बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। और भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को संरक्षित करने के लिए 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आज मनाया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। नई दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री मोदी ने ये बात कही।
हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती पर खर्च कम करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने छोटे किसानों को सशक्त बनाया है।
पीएम किसान सम्मान निधि से मिलने वाली सीधी सहायता ने छोटे किसानों को आत्मबल दिया है। पीएम फसल बीमा योजना ने किसानों को जोखिम से सुरक्षा दी है। 10,000 एफपीओ के निर्माण ने छोटे किसानों की संगठित शक्ति बढ़ाई है। कोऑपरेटिव और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आर्थिक मदद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति दी है।
श्री मोदी ने लोगों से आत्मनिर्भर भारत आंदोलन को मजबूत करने को कहा।
2047 के विकसित भारत का रास्ता आत्मनिर्भरता से होकर गुजरता है और आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा आधार है वोकल फॉर लोकल। जो चीजें भारत में बनी हो, जिसे बनाने में किसी भारतीय का पसीना बहा हो, वही खरीदे और वही बेचे, ये हमारा संकल्प होना चाहिए।
इस अवसर पर कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश के किसानों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं।
चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे एमएसपी बढ़ाने की बात हो, चाहे कृषि को बजट को 5 गुना करने की बात हो, चाहे जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात हो, अनेक उपाय किए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का सपना है कि इस देश के किसानों की आमदनी दुगनी हो।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा को गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन के लिए अधिकृत किया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि आज संसद परिसर में हुई एनडीए संसदीय दल के नेताओं की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया।
एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी का फ्लोर लीडर्स का बैठक में प्रस्तावना पास किया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव के लिए प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए और कैंडिडेट का नाम तय करने के लिए पूरा अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी और साथ में राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा जी को सौंपा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी निर्णय होगा वो सब सर्वसम्मति से एनडीए पार्टी समर्थन करेंगे।
इसी बीच निर्वाचन आयोग ने आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। मतदान 9 सितंबर को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने भूमि पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी और भूमि स्थिति रिपोर्ट की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। इस फैसले से राजधानी के लोगों को जीवन यापन में आसानी और व्यापार करने में आसानी मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के लोगों का जीवन सुगम और सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार पिछले 5 माह से लगातार कार्य कर रही है। दिल्ली की ओलंपिक एसोसिएशन विभिन्न सरकारी विद्यालयों और खेल प्रशिक्षण केंद्रों से आए बच्चों ने आज विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि दिल्ली में खेल और युवा मामलों के लिए अलग विभाग बनेगा, इससे खिलाड़ियों को जरूरत के मुताबिक सुविधाएं मिल पाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी राजधानी में कोचिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे ताकि कोई भी खिलाड़ी संसाधनों की कमी के कारण पीछे न रह जाए। इसी बीच विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कई अभिभावकों ने शिक्षा फीस निर्धारण और विनियम में पारदर्शिता विधेयक पर मुलाकात की। उन्होंने विधेयक लाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहली बार है कि कोई सरकार खुलकर अभिभावकों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि यह कानून बच्चों, उनके भविष्य और उनकी शिक्षा को पूरा फायदा पहुंचाएगा। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार निजी और सरकारी दोनों तरह के विद्यार्थियों को कई सुविधाएं देगी और दिल्ली के शैक्षणिक ढांचे का विकास करेगी।
पहली बार दिल्ली के पेरेंट्स के साथ सरकार खड़ी है, उनके फायदे के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, अच्छी शिक्षा उन्हें मिले इसके लिए हमने जो नियम बनाए, जो एक्ट बनाया, उसमें पूरे तरीके से लाभ बच्चों को मिलेगा, उनके भविष्य को मिलेगा, उनकी शिक्षा को मिलेगा, प्राइवेट स्कूल के पार्ट पे भी और सरकारी स्कूल में भी।
उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज सुखदेव विहार में दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए के मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 7,500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसमें बैडमिंटन, लॉन टेनिस, क्रिकेट प्रैक्टिस पिच, पिकल बॉल, चिल्ड्रन पार्क और जॉगिंग ट्रैक आदि जैसे खेलों की सुविधाएं हैं। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश वर्मा ने आज इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के पास यमुना की बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वजीराबाद में जलस्तर चेतावनी के निशान से ऊपर पहुंच गया है, लेकिन खतरे के निशान से नीचे है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में प्रशासन ने कार्य शुरू कर दिया है।
दिल्ली में अभी पानी का लेवल बढ़ गया है, यहाँ पे अभी 204 मीटर से कम है, मगर जो अपस्ट्रीम में अगर हम देखेंगे वजीराबाद की तरफ में तो वहाँ पे अभी 204.99 लेवल पहुँच गया है, जो कि हमारे वार्निंग लेवल से ऊपर है मगर हमारे डेंजर लेवल से कम है। तो अभी से यहाँ पे मुनादी हमारे सारे प्रशासन ने करवानी शुरू कर दी है। 12,000 के करीब में लोग अभी भी हैं जो यमुना की दोनों तरफ में बैंक के ऊपर में रहते हैं। अगर ये डेंजर लेवल से ऊपर गया तो वहां से उन लोगों को खाली कराना शुरू करेंगे।
दिल्ली नगर निगम ने आज करोलबाग जोन द्वारा दिल्ली को कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान के अंतर्गत रिंग रोड नारायणा में एक प्लॉगिंग ड्राइव का आयोजन किया। अभियान में क्षेत्रीय निवासियों ने जॉगिंग करते हुए कचरा साफ किया। महापौर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व से प्रेरित होकर दिल्ली कूड़े के खिलाफ इस लड़ाई में विजय प्राप्त करेगी और एक स्वच्छ टिकाऊ भविष्य का निर्माण करेगी। देश आज भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को संरक्षित करने के लिए 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह दिन भारत की समृद्ध बुनाई परंपराओं का उत्सव मनाने का है, जो नागरिकों की रचनात्मकता को प्रदर्शित करती है। केंद्र सरकार ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। एक रिपोर्ट।
इन पुरस्कारों का उद्देश्य उन बुनकरों, डिजाइनरों, स्टार्टअप और उत्पादक कंपनियों के काम को मान्यता देना है जिन्होंने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आज दुनिया टिकाऊ वस्त्र उत्पादों की मांग कर रही है और भारतीय हथकरघा उद्योग इस जरूरत को पूरा कर रहा है। उन्होंने दुनिया भर में हथकरघा उत्पादों को लोकप्रिय बनाने का भी आह्वान किया।
अब रेमी फाइबर भी भारत में उपजाना शुरू किया है और लीलन भी अब भारत में उपजाना शुरू कर दिया है। कॉटन तो होता ही है। हम चाहते हैं कि हैंडलूम में अब टेक्नोलॉजी साथ करे।
वहीं संत कबीर पुरस्कार से सम्मानित महाराष्ट्र के सोलापुर निवासी राजेंद्र सुदर्शन ने अपने हथकरघा बुनाई के अनुभव और उनके द्वारा निर्मित डिजाइनों के बारे में बताया।
खुद हमारा पारंपरिक बुनकर समाज है तो हम खुद इसको पैदा किया आर्ट को, और अब मेरे को 5 बार अपना डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला है, 3 बार स्टेट अवार्ड मिला है और नेशनल मेरिट अवार्ड मिला है। अभी संत कबीर अवार्ड मिल गया। मैं विदेश भी जा के आया हूँ, बहुत कुछ गवर्नमेंट हेल्प करते रहते हैं, आज मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ।
भारतीय हथकरघा उद्योग दुनिया के सबसे पुराने और सबसे जीवंत कुटीर उद्योगों में से एक है। हजारों साल पुरानी विरासत के साथ यह भारत की समृद्ध संस्कृति और कुशल कारीगरी का भी प्रतीक है। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में सरकारी विद्यालयों के बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली को स्वच्छ और सुरक्षित बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि बच्चे दिल्ली के भविष्य हैं और उस भविष्य की रक्षा हम सब की जिम्मेदारी है।
हम सब मिलकर के विकसित दिल्ली के अपने लक्ष्य के लिए काम करें और परिवार इसी तरीके से जुड़े रहें, विकसित हो और सबका विकास हो। आप सबको मेरी ओर से रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं।
सरकार ने नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाने से संबंधित राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने कहा कि यह प्रतियोगिता मेरा युवा भारत पहल के अंतर्गत आयोजित की जा रही है और नागरिक माई भारत पोर्टल पर क्विज में भाग ले सकते हैं। अब आप सुनिए दिल्ली विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल सागर। दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन आज जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने फांसीघर हटाने तथा विशेष अधिकार समिति की जांच पर एतराज करते हुए नारेबाजी की, वहीं जीएसटी पर मुख्यमंत्री के बयान की मांग पर भी नारेबाजी की। इसी बीच विपक्ष दो बार सदन से बाहर चला गया। आज सत्र में विधायकों ने अपने अपने इलाकों के मामले उठाए और शून्यकाल में सरकार से उनकी ओर ध्यान देने का आग्रह किया। सीएजी पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्ववर्ती आप सरकार के बजट को निशाना बनाया और कहा कि सीएजी को समिति में भेजा जाए ताकि दिल्ली को पता चले कि सरकार ने निर्माण योजनाओं पर नहीं सिर्फ विज्ञापनों पर खर्च किया है। विधानसभा में आज सदन शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने चेयरमैन को कार्यालय न मिलने का मुद्दा उठाया। इस पर अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली विधानसभा के 22 एकड़ से ज्यादा बड़े परिसर में कई विभाग अड्डा जमाए बैठे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी नौबत न आने दें कि मुझे इन विभागों को खाली करने के आदेश देने पड़े। दिल्ली सरकार में मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि हम जल्द ही इस विषय पर कार्रवाई। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि विधायकों को कमरे के लिए भी जल्द ही प्रक्रिया शुरू करेंगे। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने इसमें सुझाव दिया कि यह समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। भाजपा विधायक राजकुमार भाटिया ने बताया कि स्कूल फीस नियंत्रण विधेयक पर मेरे वक्तव्य को नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने तथा पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर पेश किया। इसके बाद शुरू हुए विशेष उल्लेख के मामले उठाते हुए मुंडका से भाजपा विधायक गजेंद्र दलाल ने किसानों के अधिग्रहित जमीन के बदले वैकल्पिक प्लॉट न मिलने का मामला उठाया और कहा कि करीबन 16,500 लोगों के मामलों में डीडीए ने अभी तक कुछ नहीं किया है। मालवीय नगर से विधायक सतीश उपाध्याय ने दिल्ली जल बोर्ड द्वारा मीटर की रीडिंग न करने और औसत बिल के नाम पर भारी बिल वसूली का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बहुत सारी शिकायत मिल रही है, इसे तुरंत रोकना चाहिए और नियमित रीडिंग करवानी चाहिए। रिठाला से भाजपा विधायक कुलवंत राणा ने बाजार में नकली घी, पनीर, दूध, हरी सब्जियों का रंग कर उन्हें बेचने का मामला उठाया। शहादरा से विधायक संजय गोयल ने बताया कि उनके इलाके में 1.5 किलोमीटर में 8 शराब की दुकानें खुली हुई हैं। नजफगढ़ विधायक ने नीलम पहलवान ने सब्जी मंडी के चलते जाम की समस्या का उल्लेख किया। अभी आप सुन रहे थे दिल्ली विधानसभा में आज हुई कार्रवाई की समीक्षा। दिल्ली प्रीमियर T20 क्रिकेट लीग में आज सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के साथ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने 9 ओवर में 5 विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। मानस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त योग्य सूचनाओं के आधार पर दिल्ली पुलिस ने पिछले लगभग 7 महीने में कुल 16 मामले दर्ज किए हैं। पुलिस के अनुसार इन 16 मामलों में 180 ग्राम हीरोइन, 3,700 ग्राम गांजा, 80 शराब की बोतलें और अन्य मादक पदार्थों को जब्त किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। दिल्ली सरकार ने भूमि पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र और भूमि स्थिति रिपोर्ट की अनिवार्यता समाप्त की। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सुखदेव विहार में दिल्ली विकास प्राधिकरण के मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश वर्मा ने यमुना की बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की और भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को संरक्षित करने के लिए 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आज मनाया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।